आज आपको मैशर की अदालत के बारे में कुछ अहवाल करना चाहूंगी। दुनिया की अदालत के होती है कि आखिरत की अदालत। दुनिया की अदालत में बड़े मुकदमा होते हैं जिसको क्राइम कहते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं। तो क्रिमिनल केसेस के एक्ट और उनके कलम और उनके गवाह और आई विटनेस चश्मदीद गवाह ये सब मौजूद होता है, इसके बाद मुकदमा चलाया जाता है। जितना हाई प्रोफाइल केस होता है, जितना बड़ा केस होता है, उसके मुकाबले में इतने साक्षी भी मजबूत होने चाहिए और सजाएं इस किस्म की होती है। अदालत की यहाँ अदालत जो आज हम देखते हैं कि मियां बीवी के जो झगड़े होते हैं इसको फैमिली कोर्ट्स के अंदर चलाया जाता है, लेकिन अल्लाह के हबीब ने फरमाया कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में जो सबसे पहला मुकदमा पर केस चलाया जाएगा वो मियां बीवी के दरमियान का केस चलाया जाएगा। देखो अल्लाह ताला ने इसको बरकरार रखने के लिए कितनी ज्यादा अहमियत दी है। एक तरफ कहा कि तुम अपने बाल बच्चों पर खर्च करोगे तो कयामत के दिन सबसे पहले तराजू में अल्लाह किसी को रखेगा। जहां मुकदमा की बात आई तो सबसे पहले अल्लाह के दरबार में मियां बीवी का केस दाखिल होगा और अल्लाह तबारक व तआला औरत की भी जबान पर लगाम दे देंगे, शौहर की जबान पर भी लगाम दे देंगे। दोनों में से कोई नहीं बोल पाएगा। पहले अल्लाह ताला औरत को बोलने के लिए कहेंगे तो उसके हाथ बोलेंगे, उसके पैर बोलेंगे, वो तमाम का खयानत बोलेंगे जो उसने शौहर के हक में खयानत की और शौहर का हक जाया किया है और शौहर की जितनी भी बेइज्जती की है वो सारे के सारे जितने भी केस होंगे वो आजा खुद बहुत बोलना शुरू कर देंगे। फिर अल्लाह ताला शोहर की जबान पर भी लगाम देंगे, उसके आजा भी बोलना शुरू करेंगे। औरत के हक में जितना भी उसने हक पामल किया होगा और औरत का जो कोई हक दबाया होगा और औरत के साथ जुल्म का बर्ताव किया होगा उसके सारे के सारे आजा बोलेंगे और जबान से बोलने की अल्लाह ताला एक लफ्ज बोलने की इजाजत नहीं देंगे। तो कितना संगीन मुकदमा है जो अदालत में सबसे पहले ये केस चलाया जा रहा है। आपने फरमाया इसके बाद जो केस आएगा वो मालिक और नौकर का आएगा, अल्लाह इनके हक में भी यही कार्रवाई करेंगे। वहां कोई आई विटनेस की जरूरत नहीं, कोर्ट के अंदर सबसे पहले पूछते हैं क्या एविडेंस है और एविडेंस और पुरावा हो इसके बाद ही केस की सुनवाई होती है। वहां तो किसी एविडेंस की जरूरत नहीं, कोई आई विटनेस यानी चश्मदीद गवाह की जरूरत नहीं, वहां कोई एक्यूज की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला सीधा डायरेक्ट आजा को ही बोलना कहेगा, वो आप बोलना शुरू कर देंगे। मालिक है, अल्लाह उसकी जबान पर ताला लगा देगा। अब उसके आजा बोलना शुरू करेंगे कि नौकर के साथ क्या बर्ताव किया और नौकर का क्या हक दबाया और उसके साथ क्या जुल्म किया। इसके बाद फिर अल्लाह ताला नौकर की जबान पर भी ताला दे देंगे। उसके बाद फिर नौकर के आजा बोलेंगे कि उसने अपने मालिक के हक में क्या खयानत की, उसके माल में क्या खयानत की, उसके काम में क्या खयानत की और उसका क्या नुकसान किया, वो तमाम तक आजा उसके बोलते जाएंगे और बोलते रहेंगे। तीसरा मुकदमा, हम तो ये समझते हैं कि किसी को गाली दे दी फिर क्या कहते हैं, गालियां तो हवा में उड़ जाती है, कोई हवा में नहीं उड़ती, वो सीधी उड़ करके नामे आमाल में जब्त हो जाती है। ये गालियां तो क्या है, गालियां तो उड़ जाती है, कोई गाली आज तक अल्लाह ने उड़ने दी है, हर हर गाली को अल्लाह ने सेव कर दिया है। अमर इब्ने आस पाते हैं मिस्र, जिसकी तलवार से मिस्र फतह हुआ, और जिसको सहाबा ने फातिह मिस्र का टाइटल दिया, अपनी पूरी के अंदर एक दिन गए, कहा कि पूरी भूख लगी है, तो कहा बेटा कोई हदत नहीं, मैं खाना तैयार करवा देती हूँ। इन्होंने अपनी बांदी को कहा कि जल्दी दो तीन रोटी कर ले और थोड़ा सा शोरबा बना ले। अब ये बैठे बातें कर रहे, बातें कर रहे, ज्यादा वक्त गुजर गया तो अम्र बिन आस की पूरी गर्म हो गई, गुस्से हो गई, और गुस्से में आकर के उसने गाली दी अपनी नौकरानी को। जैसे हमारी औरतें कभी जब एक दूसरे का झगड़ा होता है तो गालियां कैसी देती होगा आपको मालूम, लास्ट कक्षा की गालियां देती है, लास्ट कैटेगरी की गालियां होती है, कि जिसने ऐसी गालियां जिसने जिना की तोहमत होगी उनकी गालियां तो हम मस्जिद में बोल नहीं सकते। और आपको तो शायद ज्यादा मालूम होगा कि किस किस्म की गालियां होती हैं, उनकी गालियों में जिना की तोहमत होती है दूसरी औरत के ऊपर, कि तो ऐसी और तो वैसी। साबित ने अमर बिन आस की पूरी ने भी ऐसी ही गाली दी जिसमें सेना की तोहमत थी, तो अमर बिन आस ने कहा कि जो तुमने गाली दी तो तुमने कभी ये काम करवा के देखा तुम्हारी नौकरानी को, कहा खुदा के पाक की कसम मैंने कभी नहीं देखा। तो अमर बिन आस ने फरमाया कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी इस नौकरानी और तुम्हारी इस बांदी को हाथ में कोड़ा देगा और वो खलाएक के सामने कोड़े से तुम्हारी पिटाई करेगी, अल्लाह जलील कर देगा कि ये औरत वो है जिसने ऐसी गाली दी थी जिस पर तोहमत लगाई थी, सरासर गाली के अंदर तोहमत लगाई थी, आज खलाइक के सामने अल्लाह ताला उसको नंगा कर रहा है, खलाइक के सामने उसको जलील कर रहा है और खलाइक के सामने अल्लाह उसको रुस्वा कर रहा है। इसी तरह जिस मर्द ने भी किसी मर्द को गाली दी या औरत ने मर्द को दी और मर्द ने औरत को दी, जिसने भी गाली दी, अल्लाह तबारक व तआला इस गाली को हवा के अंदर कभी नहीं उड़ाएगा, अल्लाह नामे आमाल के अंदर जब्त करेगा। इसके बाद फिर कयामत के दिन अल्लाह मर्दों को भी कोड़ा देगा दूसरे मर्द को मारने के लिए, और जो आदमी गाली खाकर कुछ न बोले, गाली का जवाब गाली से न दे, ऐसे आदमी को कभी गाली नहीं दे। जो गाली का बदला गाली से दे दे तो बराबर सराबर हो गया, मामला फाइनल हो गया, यहां पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसको तुम गाली दे रहे हो उसने गाली का बदला गाली से नहीं दिया तो ये तुम्हारे सारे आमाल को बर्बाद कर देगा, इबादतों को सामा कर देगा और कयामत के दिन तुम्हारे नामे आमाल के अंदर एक नेकी भी नहीं होगा। तो अल्लाह कोड़े देकर कहेगा कि इनको मारो जिन्होंने तुमको गालियां दी थी, वो कोड़ों से मारेंगे, फरिश्ते कहेंगे लोगो ये कौन है पहचानते हो, लोग कहेंगे नहीं ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर लोगों को गालियां दिया करते थे और लोगों को मां बहन और बेटी की तरफ की गालियां देते थे, आज अल्लाह ने इनको मखलूक के सामने, नबियों के सामने, फरिश्तों के सामने, जिन्नातों के सामने और आदम से लेकर के कयामत तक की नस्लों के सामने आज अल्लाह ने इनको जलील कर दिया, रुस्वा कर दिया। देखो अल्लाह अपने हक के अंदर बर्दाश्त कर देगा, दरगुजर कर देगा। एक आदमी अल्लाह के दरबार में जाएगा, अल्लाह फरमाएंगे कि देखो उसका नामायमा चेक करो, फरिश्ते चेक करेंगे, फरिश्ते कहेंगे कि परवरदिगार खाली इसके नामे आमाल में तो कलिमा तैयबा नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं, अल्लाह फरमाएंगे नमाज नहीं, कहेंगे एक नमाज नहीं, रोजे रमजान के कहेंगे रमजान का रोजा भी नहीं, फिर और कोई नेकियां कुछ भी नहीं, अल्लाह फरमाएंगे एक काम करो नेकियों का पेज बंद कर दो, गुनाहों का पेज देखो कितने गुनाह हैं, फरिश्ते चेक करेंगे कहेंगे ओहो ये तो पूरी फाइल भरी हुई है, एक लकीर भी ऐसी नहीं है जो कोरी हो, पूरी फाइल भरी हुई है, अल्लाह फरमाएंगे उठाओ इसको रवाना करो जहन्नम की तरफ, और रवाना करने के लिए तैयार होंगे तो उसका छोटा मुंह जाए, अल्लाह की तरफ देख ही रहेगा, अपनी नजरें नहीं हटाएगा। अल्लाह फरमाएंगे चल, तो नजरें नहीं हटाएगा, फिर भी नजरें सामने रखी। अल्लाह फरमाएंगे तुझे मैं क्या रहा हूँ, ये तुझको उठा कर ले जा रहे, तो क्या कहता मैं ले रहा हूँ। मैंने हदीस में ऐसा नहीं सुना, मैं फजाइल आमाल की जो तालीम होती थी, इतना बड़ा महल लाए और मजमा देखो, बाहर के लोग आकर बैठते हैं तालीम के अंदर, बाहर के बेचारे बाजार और सब दूर दूर से आकर बैठते हैं, और कुएं के पास रहने वाले लोग पानी नहीं पिए। इतनी शर्म हरा वाली बात है। वो कहेगा कि मेरे रब फजाइल आमाल की तालीम में, तालीम के वक्त मैंने ऐसा नहीं सुना था। अल्लाह फरमाएंगे क्या सुना था? वो कहेगा कि वो इमाम साहब ने तो ऐसी हदीस पढ़ी थी, जिसने भी कलिमा तैयबा पढ़ लिया तो वो जन्नत में जाएगा। तो फरिश्ते कहेंगे वाह, मुफ्त में जाना है तुझको, कुछ काम तो किया नहीं और मुफ्त में जाना है, तेरी नानी लग रहे हैं। अल्लाह फरमाएंगे चलो, इसने गुमान किया, हदीस पर यकीन किया था, चलो इसके हक में जन्नत का फैसला कर देता। एक हदीस सुन करके जन्नत का फैसला हुआ, आप ऐसा मत करियो, ये तो एक एग्जांपल के लिए है, फिर आप भी शुरू ना कर दो कि कोई बात नहीं, हदीस पक्की याद कर लेंगे कि मन قال لا اله الا الله دخل الجنه, जिस आदमी ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो जन्नत में दाखिल होगा। ये तो अल्लाह तबारक व तआला का रहम करम का मामला, अपने हक में सब माफ कर रहे हैं। नमाज है मेरा हक, माफ कर दी। रमजान के रोजे मेरा हक नहीं है, माफ कर दी मैंने। तो अल्लाह अपने हुकूम के अंदर वो दरगुजर करेगा, बंदों के मामले में रब की बराबर दरगुजर नहीं करेगा। हाँ, अगर वो लोग माफ कर रहे हैं तो बराबर है, पर वहां कोई माफ करने वाला नहीं। यहाँ तो कोई हज में जाते हैं तो ये जो बोला चारा माफ कर देना, ऐसे माफ नहीं होता, उसको कहना पड़ेगा कि इतने लोगों के सामने तुमको गालियां दी थी और ऐसी गलीज गालियां दी थी, और हमने तुम्हारी पीठ के पीछे ये तोहमत लगाई थी, फिर देखो माफ कर रहा है। वो कहेगा तुझे हज में जाना हो, जहां जाना हो जा, यहाँ दिमाग खराब करने आया, वो माफी नहीं करेगा। इसलिए बोलू चालो माफ, इससे माफ नहीं होता, इससे कुछ भी माफ नहीं होता। खुलासा करना पड़ेगा कि हमने ये सब तुम्हारे पीठ के पीछे कहा है, और तुम्हारे पीठ के पीछे हमने तुम्हारा नुकसान किया, ये खोल कर कहना पड़ेगा। तुम्हारी इज्जत का नुकसान किया, तुम्हारे माल का नुकसान किया, तुम्हारी जान का नुकसान किया, ये सब बोलना पड़ेगा। बाकी अल्लाह तबारक व तआला के वहां ये हम ये ना समझे कि हमने तो मुलाकात कर ली और सब माफ करवा लिया, तो अल्लाह कहेंगे कि देख दुनिया के अंदर ये तेरे पास आया था, लेकिन तेरा ये नुकसान किया था, तेरी इज्जत पर टाका डाला था, बराबर है। तो बंदा कहेगा नहीं, ये तो माफ नहीं कर रहा हूँ, ये माफ नहीं कर रहा हूँ। तो जितनी भी कलम है सब कलम में लग जाएगी, एक कलम भी बाकी नहीं रहेगी, और अल्लाह ताला उसके हक में जहन्नम का फैसला करेगी। अपने हक में इतना दरगुजर करेगा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शैतान को भी उम्मीद हो जाएगी कि आज मैं भी माफ कर दिया जाऊं। अल्लाह इतनों की मगफिरत कर देगा, इतनों की मगफिरत करेगा कि शैतान भी उम्मीद लगाकर खड़ा होगा कि वो हो, ये तो सब मेरे भाई बहन माफ हो रहे, मैंने जिनको बहकाया था और बड़े बड़े गुनाह करवाए थे, आज तो जन्नत की तरफ जा रहे हैं, तो भी उम्मीद करेगा कि मुझे भी लगता है कि मुझे भी माफ करे, अल्लाह मुझे भी माफ करेगा। तो आप अंदाजा लगाओ कि अल्लाह तबारक व तआला की मगफिरत कितनी वसी होगी कि अल्लाह माफ कर रहा है। हाँ, अल्लाह के हबीब बाजों की शफात फरमा दें, शफात जरूर फरमाएंगे। आपने फरमाया जो मोमिन मुसलमान अजान के बाद की दुआ पाबंदी के साथ पढ़े, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावतित तामा, ये दुआ पढ़े, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि उसकी शफात मैं करूंगा, मैं अल्लाह ताला से दरखास्त करूंगा कि अल्लाह मेरी शफात पर इसको माफ कर दे। कि अल्लाह के नबी को दुआ दे रहा कि आदि मोहम्मद वसीला वल फदीला व बअथु मकाम महमूदा अल्लज़ी बअथ, अल्लाह के हबीब को दुआ दे रहा है कि अल्लाह ताला मेरे नबी को मकाम महमूद अता फरमा, मेरे नबी को वसीला और फजीला अता फरमा। यहां रह करके अल्लाह के हबीब के हक में दुआ कर रहा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसका एहसान मैं चुका दूंगा कयामत के दिन, और एहसान इस तरह चुकाऊंगा कि अल्लाह से दरखास्त करूंगा कि इसको माफ कर दे, अल्लाह ताला उसके हक में माफी का फैसला फरमाएंगे। आपने फरमाया जो आदमी हज और उमरा के लिए गया और उसने मदीने की तकलीफ को बर्दाश्त कर दिया, मदीने में पड़ने वाली अभी तो कोई मुसीबत नहीं, वहां की पड़ने वाली मुसीबत को बर्दाश्त कर लिया, उस जमाने में हालात ही हालात थे, उस जमाने में मुसीबतें ही मुसीबतें थी, अभी तो घर से भी अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर उसको कोई तकलीफ पड़ी, आपने फरमाया कि मैं उसकी शफाअत करवाऊंगा, इसलिए कि मेरे शहर में आया, वो मेरे शहर में आकर के वहां की मुसीबत को बर्दाश्त कर गया। आपने फरमाया कि जिस आदमी के मुकद्दर में अल्लाह ने लिखा हो मदीने की मौत, तो वहां मरना पसंद कर ले, इसलिए कि वहां किसी भी किस्म का फितना नहीं होगा और दज्जाल भी मदीने के अंदर एंटर नहीं होगा, और अल्लाह के नबी कयामत के दिन उसकी शफाअत करवाएंगे। और इससे बड़ी बात यह है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मन ज़ार कब्री वजमत दरु शफाअती, कि जो आदमी मेरी कब्र पर आया सिर्फ मेरी ज़ियारत के लिए, मेरी ज़ियारत की नियत से आया, तो मैं कयामत के दिन उसकी शफाअत करवाऊंगा कि इसने हाजिरी दी थी मेरी कब्र के ऊपर मेरी ज़ियारत करने के लिए। जुमा का दिन आपने फरमाया जो आदमी जुमा के दिन सुबह के वक्त दुरूद शरीफ पढ़े, रात के वक्त दुरूद शरीफ पढ़े, इसमें पैसे खर्च होते, सुबह के वक्त यानी फजर बाद या अभी नमाज के बाद और मगरिब के बाद असर के बाद इशा के बाद अगर दुरूद शरीफ की पाबंदी करेगा हर जुमा के दिन और जुमा के दिन का एहतमाम कर लेगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस आदमी की भी कयामत के दिन में शफाअत करवाऊंगा और अल्लाह तबारक व तआला से दरख्वास्त करा करके उसके हक में माफी का तलबगार होऊंगा। अल्लाह के नबी हमारे हक में बड़े मुहसिन हैं, हमने अगर थोड़ा भी एहसान किया दुरूद शरीफ पढ़ करके अल्लाह का नबी हमारे एहसान को चुका देगा। ये तो कुछ अहवाल मैंने आपके सामने रखे। अब ये मुअज्जज दिन है, अभी ईद से पहले इतवार का दिन है, वो अरफा का दिन है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अरफा का दिन जो आदमी रोजा रख सके जरूर रखे, इसलिए कि वो रोजा ऐसा है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक साल पहले और एक साल बाद के गुनाह अल्लाह माफ कर देते हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे ज्यादा अमल जो बेहतरीन अमल है इन दिनों के अंदर, वो बेहतरीन अमल है कुर्बान, अल्लाह को बड़ी प्यारी है। यहां तक के उलमा ने फरमाया कि जिस आदमी पर अगर वाजिब भी ना हो, कुर्बानी वाजिब भी ना हो, इतने बड़े सवाब को हासिल करने के लिए वो भी हिस्सा लगाए और अल्लाह के नाम पर जो खून का कतरा बहता है, अल्लाह के हबीब ने फरमाया वो जमीन पर गिरता है इससे पहले अल्लाह उसको कबूल कर देगा। तो ये तो एक जरिया है जन्नत में जाने के लिए। तो हम कुर्बानी का जो जानवर हो उसकी इज्जत करें, एहतराम करें, उसकी खिदमत करें और गंदगी करने से बहुत ज्यादा एहतियात करें। अल्लाह के नबी ने सफाई की हमें तालीम दी और जहां तक हो सके पर्दे में करने का एहतमाम करें, इसलिए कि जैसे हम अपनी इज्जत वाली चीज को छुपाते हैं इस तरीके से जिसको भी अल्लाह ने इज्जत अदा होगी, तो जहां तक हो सके पर्दे में करें और सफाई और रास्तों का बहुत ज्यादा ख्याल करें कि कभी रास्तों के ऊपर गंदगी होती है और खास करके अभी तो बारिश की सीजन है, इसमें तो और ज्यादा होगी, कीचड़ वगैरह होगा, गंदगी होगी और लोगों को बदबू ताफुन फैलेगा, इसलिए इसका बहुत ज्यादा एहतमाम करें कि हम अपने महल्ले के रास्ते, अपने मकान के सामने हर जगह पाकी और साफ सफाई का ख्याल करें। आपको मालूम है कि हमारी मस्जिद के अंदर शुरू से ही ईद उल अज़हा की नमाज होती है, नमाज का वक्त मुतय्यन हुआ है 6:25, 6:25 को जमात खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद कोई जुमा नहीं, इसलिए एडवांस ऐलान कर दिया जाता है। और तो लगेगा लेकिन फिर भी आपके जहन में एक बात आ जाए 6:25 को नमाज खड़ी हो जाएगी, इसलिए कुछ पहले ही आ जाए ताकि जो दीन की बात हम इत्मीनान से और ध्यान से सुने, और अल्लाह तबारक व तआला ने जो इस दिन को बहुत एहसास बख्शा है, तो हम खुशी के तौर पर ईद उल अज़हा की नमाज को अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला इस अमल पर हमारे मंजूर करें।
तकदीर के अंदर हिदायत है तो उनको हिदायत से मालामाल फरमा।
वरना अगर उनकी तकदीर में हिदायत नहीं तो मौलाना तुमने नमरूद जैसों को सब नई हस्ती से मिटा दिया, बुद्ध नस्र को सब नई हस्ती से मिटा दिया, एक फिरौन नहीं हजारों फिरौनों को काम पर लगा दिया, हजारों फिरौनों को जमीन के अंदर दबा दिया, वो मर गए मिट गए, कब्रों में भी उनके निशान गुम कर दिए, आज इनका नाम लेने वाला कोई नहीं। मौलाना जो कि नमरूद और फिरौन आदा है उसके मुकाबले में मूसा जरूर होता है, हर जमाने के अंदर उन्होंने मूसा को भेजा है। मौला ये उम्मत ऐसी कश्ती की नजर आज ऐसी कश्ती की तरह देख रही है जिसका कोई मल्लाह नहीं होगा। मौला हमारे हक में सलाउद्दीन कलियुग जैसा भाई मुकद्दर फरमा कि जो उम्मत को थाम कर चलने वाला हो, रातों को उठकर उम्मत के लिए रोने वाला हो, फिर गिराने वाला हो, उम्मत की कीमत की कुरान अपने दिल के अंदर रखने वाला हो, वरना हमको ऐसे अजीम आई अदा फरमा माना जब बीमारी खुशी फरमा तंदुरुस्ती अदा फरमा जो कर्ज के अंदर डूबे हुए हैं, वरना कर्ज की अदायगी के लिए कोई असबाब उन्हें नजर नहीं आते, लेकिन मौला तेरे खजाने लामहदूद हैं। जब कभी वो किसी का काम करने पर आता है तो असबाब आप खड़े हो जाते हैं, जो गरीब है फकीर है इनको इसके हलाल अता फरमा, वसी रिश्ता अदा फरमा, मौला ज्यादा रिश्ता अदा फरमा, तंगियों से हिफाजत फरमा, तंदस्ती से हिफाजत फरमा, जो भी हमारी जवान बेटियां बेटा है इनको नेक सारे मुंतकी पर इसका शोर अदा फरमा, जो भी हमारे जवान बेटे गुर्बत मस्करत की वजह से बेबस और बेकस है निकाह नहीं कर सकते, मौला इनको बेहतरीन वसाई अदा फरमा और मौला इनको बेहतरीन बीवी नसीब फरमा, जो भी औलाद है उनको नेक सारे मुंतकी पर इसका औलाद अदा फरमा, मौला इस मजमा के अंदर इतने बेचारे परेशान हाल लोग होंगे हम उनकी परेशानियों को नहीं जान सकते, मौला तो अल्लाम है, मौला अलीमुन बिज़ाति सुदूर है, अल्लामुल गुयूब है, मौला तो उनके सीनों में क्या है जानता है, मौला वो किसी के सामने जरे नहीं करते, सिर्फ तेरे ही सामने मानते हैं, तेरे सामने हाथ उठाते हैं, मौला इन परेशान हालों की परेशानियों को दूर करो, मौला उनकी मुसीबतों को दूर करना, मौला उनकी सारी मुसीबतों को दूर करना, उनके हक में बेहतरीन अय्याम मुकद्दर फरमा, मौला उनकी नस्लों में नेक सारे मुत्तकी परहेज़गार को अता फरमा, मौला जो लोग उनको दुआओं का कहते हैं इनके जायज मकासिद को पूरा फरमा, हमारी माँ बहनें जो भी दुआएं मांगती हैं उनकी दुआओं को कबूल फरमा, बड़े मुबारक अय्याम हैं तुझे बहुत पसंद है ये अय्याम, मौला हमारी इबादतों को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को भी कबूल फरमा, वसल अल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अलैहि सय्यिदिना मुहम्मद व अलैहि वसहबिहि अजमईन।